ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण कर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय दिनवाणी के ज्ञान से हो तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल है पावे पद निर्वाण जय अपुनर्भव भावमय भय परम शिवराय।
यहाँ अभी कर्मकांड के आधार से जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पंडित टोडरमल जी ने भाषा टीका लिखी हुई है उसके आधार से यहाँ हम भावों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जीव के पांच असाधारण बात हमने देखे, उसमें औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ऐसे हमने पांच प्रकार के भाव देखे थे और कल उनको गुणस्थानों पर भी घटित करने का प्रयत्न किया था। उसकी चर्चा हम देखेंगे फिर दोबारा, क्योंकि प्रत्येक गुणस्थान में कौन से भाव हो सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमने देखा था, अभी मूल भावों की चर्चा हम पहले देखेंगे, उसमें और कौन से एक्स्ट्रा यानी उत्तर भाव कितने हैं उसकी तो बाद में बात करेंगे। जैसे मूल भाव यानी औदयिक है कि नहीं, पारिणामिक है कि नहीं है, क्षायोपशमिक है कि नहीं, क्षायिक है कि नहीं, उसकी उतनी ही बात करेंगे। तो पहले गुणस्थान में कौन कौन से भाव हो सकते हैं या होते हैं, पांच भावों में से यहाँ पांच भाव है ना। हाँ आप कहना नीलेश, कौन कौन से भाव हो गए पहले गुणस्थान। हाँ डिटेल नहीं चाहिए, मूल भाव बता। हाँ कौन से तीन? हाँ शौक्षमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो मिथ्या तो गुणस्थान में तीन हो गए, डिटेल बात हम बाद में देखेंगे। अब दूसरा जो सासाधन गुणस्थान है, तो सासाधन गुणस्थान में कौन कौन से हो गए बेन आपके? हाँ। कौन कौन से बैठ के हाँ, पारिणामिक, शैवशमिक और औदयिक, बराबर। तीसरे गुणस्थान में लता बेन आपके ना, तीसरे गुणस्थान में कौन कौन से हो गए? औदयिक, पारिणामिक, शैवशमिक, बराबर, तीन ही हो गए, बराबर। अब चौथे गुणस्थान में आप कहेंगे? हाँ कौन कौन से? सभी यानी औपशमिक भी और क्षायिक भी। औपशमिक कौन सा होगा वहां पर भाव? हाँ कौन सा सम्यक्त्व? औपशमिक सम्यक्त्व कहें, क्योंकि द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मगर जो श्रेणी चढ़कर नीचे आता है क्रम से वो चौथे तक जाता है, जा सकता है। तो द्वितीय उपशम सम्यक तो चौथे से ग्यारहवें तक पाया जाता है द्वितीय उपशम, प्रथम उपशम तो चौथे पांचवें छठे सातवें में पाया जाएगा। तो चौथे में दोनों ही प्रकार के औपशमिक सम्यक तो हो सकते हैं, प्रथम उपशम भी और द्वितीय उपशम भी। द्वितीय उपशम उसे कहते हैं जो उपशम श्रेणी चढ़ता है ना, आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें में जाता है और वापस नीचे आता है, तो श्रेणी चढ़ने के पहले क्षोपक्षम में से वो द्वितीय उपशम करता है सम्यक को, फिर चारित्रम होने का उपशम करते करते चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है, उसका द्वितीय उपशम सम्यक तो अभी चलता ही रहता है। तो कोई कोई छठे से नीचे भी आ सकता है, पांचवें में आएगा, चौथे में भी आएगा, तब तक उसका द्वितीय उपशम चलता रहता है। क्या प्रश्न है? अभी कहाँ उदय में आए? अभी नीचे गिरा है, चारित्र मोहिनी कर्म एक के पीछे एक, वो क्रम से उसका उपशम मिट गया, इसलिए उसको लॉक करके रखा था, लॉक छोड़ा है, अभी क्रम से जैसा जैसा उदय मिटता गया था वैसे क्रम से ग्यारहवें में से दसवें में। ये बहुत लोगों की ऐसी भ्रांति है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा आता है, कैसे परिणामों की विचित्रता, कि जो ग्यारहवें गुणस्थान तक की जिसने वितरागता प्राप्त की है वो पहले तक भी जा सकता है, परंतु वो ग्यारहवें में से जंप मारकर कोई पहले में नहीं आता। ग्यारहवें में से नियम से दसवें में, फिर नौवें में, फिर आठवें में, सातवें में, छठे में, फिर उसके रास्ते बहुत है, या तो दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ेगा, कोई क्षायिक सम्य दृष्टि तद्भव मोक्षगामी क्षपक श्रेणी भी चढ़ेगा, कोई चौथे तक नीचे आएगा, कोई वो और नीचे मिथ्यात्व में भी जा सकता है। क्या क्रम का जो है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक गुणस्थान में चारित्र मोहिनी को दबाते दबाते ऊपर उसी क्रम से नीचे आएगी, इसके लिए ऑप्शन एक ही है। ग्यारहवें में अगर मर जाता है तो डायरेक्ट चौथे में आएगा, क्योंकि वो देवगति में जाता है, तो वहां उसको ग्यारहवें में से डायरेक्ट जंप मार के चौथे में आएगा। ग्यारहवें में मरण हुआ और विग्रह गति के पहले समय में चौथे गुणस्थान में, क्योंकि देव में तो चौथा ही गुणस्थान है। कल हमने देखा था ना वो मुनियों का, तो मुनि तो मनुष्य में मुनि है, मरकर जब देव में चले जाएंगे तो उनका गुणस्थान चौथा हो जाता है। आप कहते हैं देव में गया तो बस गया, नीचे नहीं गया, नीचे किसी गति के कारण नहीं जाते हैं। एक बात, अभी देव में भी चौथे में चला गए तो देव में भी जाकर कोई मिथ्या तो में जा सकता है। अभी श्रेणी में मरने वाले नहीं जाते, क्योंकि वो अनुदिश अनुत्तरों में जन्म लेते हैं, वहां तो एक सम्यक्त गुणस्थान ही रहता है। हर जीव के परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि वो उसको गिरने की आवश्यकता है, कोई गिर सकता है, और ऐसे जीवों का वहां शास्त्र में वर्णन किया जाता है, हर जीव गिरता ही ऐसी बात नहीं है। प्रश्न का आपका प्रश्न है, क्षायिक सम्य दृष्टि जीव भी उपशम श्रेणी मान सकता है? तो मान सकता है, उपशम श्रेणी चढ़ के फिर वापस उतरेगा, वो कहां तक नीचे गिरेगा भी मेरा प्रश्न है। वो चौथे के नीचे तो जाएगा नहीं, क्षायिक सम्य दृष्टि है, ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, फिर वो द्वितीय उपशम करने की जरूरत क्या है? जिसको क्षायिक सम्य दर्शन है वो जब श्रेणी चढ़ता है उपशम श्रेणी, तो चारित्र मोहनीय का उपशम करते करते चढ़ता है, उसके तो दर्शन मोहनीय है ही नहीं है, उसको उपशम सम्यक वो नहीं है, क्षायिक सम्यक वो है। करेगा कैसे? जिसने क्षय कर दिया है उसके सत्ता में कोई कर्म है ही नहीं है, तो उसको उपशम करने का सवाल ही नहीं रहता। ख्याल आया? जिसके सत्ता में कोई दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी है ही नहीं है, क्योंकि उसने क्षय कर दिया है, अभी उसको उपशम करने का सवाल कहां रहा है ना? हाँ, उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनी का उपशम करते करते ऊपर जाएगा और फिर क्रम से नीचे आएगा, क्योंकि उपशम जो किया है क्षय नहीं किया है, वो सत्ता में पड़ा है, उदय के अयोग्य हुआ है, उदय में नहीं आ रहा, इसलिए उदय नहीं है तो वैसे वहां जीव के वैसे परिणाम भी नहीं है। पूर्ण रूप से उपशमित होता है तो यहां जीव पूर्ण रूप से वितरागी है ग्यारहवें गुणस्थान में, बीच में कोई क्षय नहीं करता। उपशम श्रेणी में से कोई रास्ता होगा अभी आठवें के बाद क्षय करके क्षपक श्रेणी में घुस जावे, ऐसा नहीं होता। जिसने उपशम स्टार्ट किया है शुरू से ही उसके ऐसे परिणाम है कि वो उपशम ही करेगा और फिर क्रम से नीचे आएगा, नीचे यानी छठे तक आएगा। बाद में जो कोई क्षायिक समय दृष्टि होगा तो शपक श्रेणी चढ़ेगा, प्रोवाइडेड उसी भव में वो मोक्ष जाने वाला है। उसके लिए भी बहुत कंडीशंस होती है, आयु बांधी हो तो कैसे वो शपक श्रेणी चढ़ेगा। आगामी भव की आयु जिसने बांधी है, देव की बांधी है, तो वो शपक श्रेणी कैसे चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता। जिसके अन्य कोई सहन है ना, वज्र नाराज जिसको है, तो वो कैसे चढ़ेगा शपक श्रेणी। वज्र नाराज नाराज वाला उपशम श्रेणी तो चढ़ सकता है, परंतु क्षपक श्रेणी तो वज्र ऋषभ नाराज वाला ही चढ़ेगा पहला सैनन वाला। ऐसे उसके कुछ नियम होते हैं। अब यहां हम कल की बात आगे बढ़ाएंगे। आपका प्रश्न है गिरने वाला फास्ट क्रम से जाता है क्या, जैसे एक एक गुणस्थान का काल हमने देखा था ना, छठे से भी सातवें का छोटा काल है, उससे आठवां का छोटा है, नौवें का छोटा है, दसवें का छोटा है, ग्यारहवें का उससे छोटा है, फिर थोड़े बड़े बड़े ऐसे छठे तक। पूरे छठे का जितना काल है उपशम श्रेणी चढ़कर पूरे उतरे नीचे, उससे भी छठे का काल बड़ा है। फिर बड़ा है तो भी इतना बड़ा नहीं है कि 48 मिनट तक टिके, ख्याल है ना। तो उसके बहुत से भेद है। अब यथा योग्य हम अंतर्मूर्त कहेंगे, क्योंकि उसके फिर डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करना, जब आप श्रेणी चढ़ोगे तब जान लेना। शपक श्रेणी चढ़ना है जो क्षायिक समय दृष्टि। अब जो द्वितीयोपशम वाला है तो क्या करेगा, द्वितीयोपशम में से फिर क्षोपशम होगा, क्षोपशम में से क्षायिक समय दृष्टि होगा, फिर क्षायिक समय दृष्टि होने के बाद क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। जिसने पहले ही क्षय किया हुआ है, जो क्षायिक समय दृष्टि ऑलरेडी है, उसने मान लेते किसी ने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा और फिर वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। फिर दोबारा करण मान लेंगे। वे ये करण परिणाम तो होते ही, करण परिणाम तीनों को मिलकर करण कहते हैं। कौन से तीन बार? देखिए, उपशम जब उपशम श्रेणी चढ़नी है, कोई सामान्य मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थान में है, क्षोपशम समय दृष्टि है, तो पहले द्वितीय उपशम करने के लिए तीन करण परिणाम होंगे। तीन करण परिणामों के यानी उसमें भी अपूर्वकरण, अधप्रवृत्तकरण, ये अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये गुणस्थान नहीं हो, हाँ ये तीन करण, हाँ करण, तो ये तीन करण करके द्वितीयोपशम हो जाएंगे। द्वितीयोपशम हो जाने के बाद फिर दोबारा और तीन करण मान लेंगे श्रेणी चढ़ने के लिए। उसके तीन, हाँ जब क्षायिक होता है, क्षोपशम में से जब क्षायिक समय दर्शन होता है उसके लिए भी, उसमें भी क्षायिक समय दर्शन होता है ना, क्या होता है अनंतानुबंधी चार और दर्शन होने तीन, इनका सत्ता में से क्षय होता है। उसके लिए सबसे पहले अनंतानुबंधी का क्षय कैसे होता है, क्षय होना ही नहीं क्या, तो सत्ता में जितने अनंतानुबंधी पड़े हैं वे सारे के सारे विसंयोजन होकर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और अन्य नौ कषाय रूप परिणमित होते हैं, तो उसको अन्य रूप से होकर नष्ट होते हैं। उसके लिए भी तीन करण परिणाम मानता है जी। जब ये अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो चुका तभी ये दर्शन मोहने के तीन है उसका क्षय करने के लिए दोबारा तीन करण परिणाम मानता है। उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व के परमाणु है उसका क्षय होता है ने क्या होता है, वो सारे के सारे सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होते हैं। उसके बाद ये सम्यक मिथ्यात्व वाले सब सम्यक प्रकृति रूप होते हैं और वो सम्यक प्रकृति रूप है वो भी उसमें जो कुछ अपकर्षण आदि बहुत सारा प्रोसेस बड़ा है उसका, वो भी अंतर्मूर्त में सत्ता में से नष्ट हो जाते हैं, खिर जाते हैं, गिर निकल जाते हैं। इस तरह उसको कहते ये क्षायिक समय दृष्टि हुआ। ख्याल है, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का वो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके सत्ता में जो मिथ्यात्व पड़ा था अंदर पड़ा हुआ, वो उदय में है ही नहीं है, अंदर सत्ता में पड़ा है, वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप होता है। और जो सम्यक मिथ्यात्व वाले परमाणु है वो सम्यक प्रकृति रूप, यानी पूरा ही जो माल है, दर्शन मुनि का पूरा माल जितना कुछ अनंत अनंत परमाणु, वो सारे सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं। सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तभी, और फिर वो सारे ही निकल जाते हैं, खिल जाते हैं एक अंतर्मूर्ति, और फिर उसको कहते हम एक क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ। हाँ, क्षोभक्षम सम्यक कोई नहीं होता, क्षोभक्षम सम्यक में से ही क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि उसके सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। औपशमिक में क्या है, उसने सारे उपशमित कर रहे हैं, उपशमित किया है उसका अर्थ है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ना उसका क्षय कर सकता है, ना उदय होता है, ना कुछ होता है, उपशमित है यानी है ऐसे अंदर पड़े हैं। हाँ, उसमें उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होता, अंतर्मूर्त का काल, उपशम का काल अंतर्मूर्त होता है। हम कितने काल तक उसके यानी कर्म दबे रहते हैं, तो अंतर्मूर्त के उसका काल पूरा होता है, तो जैसे वो पहली अवस्था होती है वैसे वो फिर से उदय में आते हैं। अभी यथा योग्य अंतर्मूर्त क्योंकि अभी हमने देखा था ना द्वितीयोपशम का जो काल है अंतर्मूर्त वो बड़ा है। द्वितीयोपशम के काल में ही मान लेते इतना बड़ा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल है, यानी उसने अंतर इतना बड़ा कर दिया है। अब उसके अंदर उपशम श्रेणी का काल इतना चढ़ के उतरने का, इतना द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल बड़ा है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होने के बाद श्रेणी चढ़ना शुरू किया, यहां से यहां तक श्रेणी चढ़ के उतरा, यानी उसका औपशमिक चारित्र का काल पूरा हुआ। और फिर बचे हुए काल में फिर वो सातवें से छठे, छठे से पांचवें, चौथे तक भी आ सकता है। तो उसका ये द्वितीयोपशम का काल बड़ा है, उसके अंदर अंदर ही चारित्र की उपशमना करके फिर लौटता है। ये अलग अलग अंतर्मूर्त छोटे बड़े बहुत होते हैं। हाँ, ये उसके असंख्यात प्रकार है अलग अलग, कौन सा काल छोटा है, कौन सा कितना बड़ा है, कौन सा कितना गुना है, ये सारे जिसको अल्प बहुत्व कहने में आते हैं, ये अपने सारे ही करणानियोग के ग्रंथ उससे भरे पड़े हैं। क्या करें, हम खाली उनकी पूजा करते हैं देवशास्त्र गुरु की, और शास्त्र में क्या लिखा है हमको कहां फुर्सत है, रुचि भी नहीं है। तो ये हमने देखा था कि चौथे गुणस्थान में पांच भाव देखे हमने, मूल भाव की बात चल रही, पांचवे में कितने हो गए। हाँ बोल, पांच भाव, छठे में सभी, सातवें में, सातवें में कितने होंगे, हमने नहीं किया, हम तो मूल भाव पूछ रहे हैं, पांचों हैं, सातवें में कहां तक पांच भाव हो गए। हाँ बोलिए, पांचों ही भाव कौन से गुणस्थान तक पाए जाएंगे, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। हाँ, तेरहवें में घटाओ आप, चलो। हाँ, औदयिक भाव है क्योंकि गति भी है, असिद्धत्व है, ठीक है, हमने औदयिक भाव को स्वीकार कर दिया। हाँ, औपशमिक नहीं, अच्छा इन्होंने एक कम कर दिया, औपशमिक नहीं, अभी क्षायोपशमिक घटाओ। आपका कहना है दसवें तक पांचों भाव रहेंगे, अच्छा एक और बढ़ा दिया, ग्यारह। हाँ बोले, ग्यारहवें गुणस्थान तक, देखिए कैसे हम देखेंगे ग्यारहवें गुणस्थान तक पांचों भाव कैसे हो सकते हैं, औदयिक होगा कि नहीं होगा, है ना, पारिणामिक तो सब में होता ही। हमने देखा बारहवें गुणस्थान तक क्षायोपशमिक भाव है सबके, तो क्षायोपशमिक भाव भी है बरोबर, औपशमिक तो वो औपशमिक चारित्र है वहां, और क्षायिक भाव है कि नहीं, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक उपशम से नहीं करता, तो वहां क्षायिक भाव भी पाया जाएगा। कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, क्षायिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, उपशम श्रेणी, उपशम तो चारित्र मुनि का उपशम करता है, क्षय उसने दर्शन मुनि का किया है पहले, जैसे द्वितीयोपशम वाला श्रेणी चढ़ता है ना उपशम श्रेणी, वैसे क्षयिक समय दृष्टि जीव उसने क्षय किसका किया है, दर्शन मुनि अनंतानुबंधी का। उसके चारित्र्य मुनि की 21 प्रकृति बाकी है, उसका उपशम करके वो 11वें में गया। तो चारित्र मुनि की अपेक्षा उपशम भाव यानी उपशमिक भाव, और दर्शन मुनि का क्षय किया इसलिए क्षयिक भाव है ना। तो चौथे पांचवें छठे सातवें 11वें तक, 11वें तक कौन से 11वें लेना, ये उपशम श्रेणी वाले 8वां 9वां 10वां, हाँ, तो उसमें पांचों ही भाव हो सकते हैं। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से भी देखेंगे तो हो सकते हैं, एक जीव की अपेक्षा अभी हमने नहीं लगाया, अभी एक जीव की अपेक्षा पांचों ही भाव कौन से गुणस्थान में होंगे, एक ही जीव की अपेक्षा क्या चौथे गुणस्थान में होगा कि नहीं होगा, एक जीव की अपेक्षा चौथे गुणस्थान में होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा चौथे गुणस्थान में जिसको औपशमिक सम्यक्त्व है उसको उसी समय क्षायिक नहीं हो सकता है ना, या तो औपशमिक होगा या क्षायिक होगा, बराबर, तो कब होगा, हाँ, कौन से एक जीव की अपेक्षा 11वें गुणस्थान में पांचों भाव अभी घटित करके बताओ आप, हाँ वो तीन अन्य हमने, हाँ औदयिक देव, बहुत अच्छा, जब कोई क्षायिक समय दृष्टि जीव तो उसका क्षायिक सम्यक्त नाम का क्षायिक भाव है, उपशम श्रेणी चढ़कर 11वें गुणस्थान में आया है तो औपशमिक चारित्र है और क्षायिक सम्यक्त है, उस एक जीव को एक ही समय में पांचों भाव है, 11वें गुणस्थान, बराबर, नहीं उसकी बात अभी हम कर, उसके हमने देखी नहीं थी ना, डिटेल्स में नहीं देखे थे हम, तो यहां मूल भाव अभी घटित कर रहे हैं, अनेक जीवों की अपेक्षा हमने मूल भाव देखे, हमने अभी 7वें तक देखे ना, ये तो उपशम की अपेक्षा हमने देखी, 8वें गुणस्थान में कल हमने जो डिटेल में लगाए थे याद है ना, कल लगाए थे अच्छा 7वां नहीं लगाया, अभी हम लगाएंगे, ये 6 तक भी याद है कि नहीं है कि भूल गए, देखो यहां जो लिखे हैं कैसे लगाने हैं, औदयिक भावों की लिस्ट यहां देखी हमने, समझ सीधा रखना भैया, गिरेगा नहीं, अभी हम कैसे, जैसे हमने अभी देखा मिथ्या, तो कल जो कोई नहीं होगा उसके लिए मैं अभी थोड़े शॉर्ट में बता देती हूँ, मिथ्या तो गुणस्थान में कौन से भाव हो गए, तो हमने यहाँ ये इसकी जाति अलग अलग कर दी, ये 8 अलग अलग औदयिक भाव है, इसको जाति पद कहेंगे, पद आठ है न? अभी गति में 4 गति हो सकती है, कषाय में 4 कषाय होते हैं, वेद में 3 वेद होते हैं, लेशा में 6 लेशा होते हैं, तो उसको गिनकर हम 21 भाव कहते हैं, परंतु 21 के लिए मूल जाति कितनी है, 8 है, वैसे ही क्षयोपशम भाव में कोई ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान है, अज्ञान यानी कुप ज्ञान है, दर्शन 3 है, दानादि जिसको लब्धि कहते हैं, लब्धि एक क्षयोपशम ये वाली लब्धि नहीं, हो पंच लब्धि वाली लब्धि नहीं, फिर ये भी 5 लब्धि कहलाती है, इसको भी दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, जब क्षोभम रूप है उसको कहेंगे ये वीर्यादि या दानादि 5 लब्धि ऐसा कहेंगे उसको, और फिर क्षोभम सम्यक तो संयमा संयम और सराग चारित्र, ये क्षोभम भाव है, कितने हुए, हाँ ये 7 में से कौन कौन से, उसको हमको हर एक गुणस्थान में कौन से उसको देखना है, पारिणामिक भाव है जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, औपशमिक में औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, संयमा संयम 5वें गुणस्थान वाले को होता है, वहां भी क्षोभम भाव है, थोड़ा संयम है थोड़ा असंयम भी है वहां, और सराग चारित्र ने 6ठे 7वें गुणस्थान वाले का जो चारित्र है वो क्षोभम रूप है वहां पर, क्योंकि वहां भी वो संकलन के देशगाति का वगैरह उदय होता है। अब ये जो क्षायिक भाव है, छठे और सातवें दोनों में ही चारित्र मोहनी का क्षोभम चलता है, इसलिए उसको सराग चारित्र कहते हैं। ये चारित्र सराग नहीं होता है, उसके साथ में वो राग भाव भी है ना। हाँ, तो एक शाही में ज्ञान दर्शन समेत वो चारित्र और फिर वो दानादि पांच, जिसको हमने वहां पांच कहा था, यहाँ इसमें पांच एक शाही पांच लब्धि कहेंगे इसको, और सब मिलकर नौ शाही लब्धि हो जाएगी। अब हमने मिथ्यात्व पर घटाया था, मिथ्यात्व में 21 के 21 औदयिक भाव होते हैं। शौषम भाव में हमने देखे थे तीनों अज्ञान है। दर्शन में जब औधिक ज्ञान कहेंगे ना सम्यक, तो ही दर्शन लेना उसके साथ, नहीं तो मिथ्या दृष्टि के लिए दो ही दर्शन कहना, ऐसा वो करना नियोग का नियम है। अब नहीं पूछना क्यों। ये दाना भी पांच है, अभी नीचे के कुछ हो गए क्या नहीं तीनों में से। हाँ बे, शोभसम सम्यक तो होगा क्या मिथ्या दृष्टि को? नहीं होगा। संयमा संयम भी नहीं है और सराग चारित्र भी नहीं है। ये बाह्य से व्रत अंगीकार किया किसने महाव्रत, तो कौन सा चारित्र कहेंगे? तो इसमें से कुछ नहीं होगा उसके, ख्याल है ना। अब ये पारिणामिक भाव मिथ्या दृष्टि के कौन कौन से हो गए? कि तीनों, क्योंकि हम अनेक जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं, कोई भव्य है कोई अभव्य है, जीवत्व तो सब में है। क्षायिक भाव कोई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इस तरह हमने मिथ्यात्व गुणस्थान में देखा। अब सासादम गुणस्थान में इसमें से क्या नहीं होगा या कुछ एक्स्ट्रा होगा क्या? मिथ्यात्व नाम का वो औदयिक नहीं होगा, तो 21 के बदले में अभी हम वहां 20 गिनेंगे। और पारिणामिक भाव में दो ही होगे, क्योंकि सासादन वाला सम्यक हमें से अभी गिर कर आया, एक बार उसने अपने को प्रूव कर दिया, वो तो भव्य ही है ना। तो अभी दूसरे गुणस्थान के आगे सर्वत्र 14 तक जीवत्व और भव्यत्व कहेंगे हम। हाँ, अभी आगे के तो भाव औपशमिक और क्षायिक भाव तो दूसरे वाले को नहीं है। तीसरे गुणस्थान में सब है कि नहीं है? 20 है। फिर क्षायोपशमिक भाव वही अज्ञान है। हाँ, तीसरे में, तीसरे गुणस्थान में क्षायोपशमिक सम्यक तो नहीं है। मिश्र गुणस्थान का नाम है और उसमें क्षायोपशमिक भाव में एक दर्शन ज्यादा लिया था, दर्शन ज्यादा लिया था, क्योंकि मिश्र ज्ञान है उसके साथ वाला दर्शन लिया था, ख्याल है ना, इसलिए वो 11 हुए थे। पारिणामिक भाव दो, आगे के कुछ नहीं है। चौथे गुणस्थानों में तो चारों पांचों ही भाव लगेंगे। चौथा गुणस्थान है तो किसी के सम्यक दर्शन क्षोभम वाला है, कोई को उपशम वाला है, किसी को क्षायिक वाला है। श्रद्धा का तो वो मिश्र, यानी वो गिर गया। हाँ, नहीं उसमें वो क्षायोपशमिक भाव में ही घटित करते हैं वैसे। हाँ, मगर उसकी बहुत सूक्ष्म चर्चा है, अभी उसकी यहां नहीं लेना। हाँ, वो अलग अपेक्षा से उसको उसका क्षोभमिक गिना है। अभी असंयत में चौथे गुणस्थान में उसमें से क्या क्या गया? अभी सब है ना, मिथ्यात्व नहीं है, असंयम है, अज्ञान है, असिद्धत्व है, तो 20 के 20 भाव वहां पर। क्षोभमिक भाव एक क्षोभम सम्यक तो बढ़ गए ना, अब वहां अज्ञान था, अभी सम्यक ज्ञान देना है। तो मतिशुता अवधि तीन ज्ञान हो सकते हैं, मन परे ज्ञान नहीं हो सकता है चौथे वाले को। तो तीन ज्ञान, तीन दर्शन, दानादि पांच और क्षोभम सम्यक, तो ये 12। आगे वाले तो दो, औपशमिक में एक सम्यक्त्व लेना और क्षायिक में भी एक सम्यक्त्व लेना, इस तरह से चौथे वाले के भाव में। पांचवे वाले में अभी औदयिक भाव में क्या क्या नहीं होगा? गति दो ही होगी, दो नहीं होगी, ख्याल है ना, क्योंकि संयम असंयम है, तिर्यंच और मनुष्य में होता है। दो गति कषाय, कषाय चारों, यहां चौकड़ी की बात नहीं है, क्रोधमान माया लोभ की बात है। चारों कषाय, वेद तीनों, लेशा तीन, तीन शुभ लेशा, पांचवें गुणस्थान में तीन शुभ लेशा होती है। मिथ्यात्व तो नहीं है, असंयम भी नहीं है, क्योंकि उसके अभी संयम असंयम हुआ है ना। बाकी का दो है, अज्ञान भी है और असिद्धत्व भी है। अभी क्षयोपश, हाँ ये 14 हुए। क्षयोपशमिक भाव में ज्ञान कितने हैं? 3। अभी भी उसको मन पर ज्ञान का ये नहीं हो सकता, अधिकारी नहीं हो सकता। 3 दर्शन, दानादि 5, क्षयोपशम सम्यक्त्व और संयमासंयम। कितने हुए? 13। हाँ, पारिणामिक 2, औषमिक कौन सा? 1 औषमिक सम्यक्त्व। हाँ, और क्षायिक में भी क्षायिक सम्यक्त्व। दूसरा कोई क्षायिक भाव यहां नहीं है। अब छठे की बात कल देखी थी हमने, प्रमत्त की, फिर दोबारा देखते हैं। अब प्रमत्त में गति कितनी है? एक ही मनुष्य गति, क्योंकि छठा गुणस्थान अन्य किसी गति में नहीं है। गति एक ही लेना, कषाय 4, वेद भी 3, लेशा 3। मिथ्यात्व नहीं, असंयम नहीं, अज्ञान है कि नहीं? हाँ, केवल ज्ञान नहीं है ना, अभी तब तक अज्ञान है, औदयिक अज्ञान, उसको कहेंगे औदयिक अज्ञान है वहां पर। तो कितने हुए? 13 हुए। अब क्षयोपशमिक भाव गिनेंगे। अब ज्ञान कितने लेना? हाँ, मुनिराज है तो यहाँ मनोपरे ज्ञान किसी को हो सकता है। तो 4 ज्ञान, 3 दर्शन, दानादि 5, क्षयोपशम सम्यक्त्व और सराग चारित्र। सराग चारित्र अभी संयमा से हमको हटा देना, सराग चारित्र को लेना। हाँ, तो कितने हुए? 1 ज्ञान बढ़ गए ना, तो अभी 14 हो। पारिणामिक भाव तो 2 है, औषमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। अलग अलग जीवों की अपेक्षा, इसलिए एक जीव की अपेक्षा लेंगे तो या तो क्षयोपशमिक होगा, या औषमिक होगा, या क्षायिक होगा। एक काल में कोई एक सम्यक्त होगा ना, एक जीव को, एक के पीछे एक तो हो सकता है, परंतु एट एनी गिवन टाइम एक काल में तो कोई एक सम्यक्त होगा, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। यहां तो अभी यहां क्षायिक चारित्र नहीं है, छठे सातवें गुणस्थान में क्षायिक चारित्र नहीं होता, वो तो क्षपक श्रेणी में ही हम क्षायिक चारित्र कहेंगे। हाँ, तो इसलिए अभी अप्रमत्त की बात कल नहीं ली थी। तो अप्रमत्त में क्या डिफरेंस होगा सातवें में? अभी हमने छठे की बात देखी, सातवें में क्या क्या होगा? गति कौन सी? हाँ, कषाय 4, वेद लेशा 3, लेशा मिथ्यात्व तो नहीं, असंयम नहीं, अज्ञान। हाँ, तो उतने ही भाव होंगे जो छठे के है, औदयिक भाव में कोई फर्क नहीं है। 13 है ना? अब लिखे, नीचे लिखना यहां अभी अप्रमत में, कल तो हमने देखा था बाकी सब। अब जितना जिसको दिखेगा, हम तो मुंह से बोल ही रहे हैं, तो 13 हो गए। अब क्षयोपशमिक भाव, 4 ही ज्ञान, 3 दर्शन, दानादि 5, क्षयोपशम सम्यक्त्व, सराग चारित्र। यानी छठे में और सातवें में कोई अंतर नहीं है, भावों की अपेक्षा यहां देख रहे हैं। तो 14 भाव उसमें भी हो गए। पारिणामिक 2, औषमिक सम्यक्त्व होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, कोई भी होगा, प्रथम ऑप्शन भी हो सकता है, द्वितीय ऑप्शन भी हो सकता है। हाँ, और क्षायिक सम्यक्त्व। चारित्र नहीं अभी लिया हमने, क्षायिक भाव में भी सम्यक्त्व लिया, औषमिक भाव में भी सम्यक्त्व लिया, बरोबर हो गया ना अपना?
औषमिक और क्षायिक,
देखो क्षयोपशमिक में कितने लिखे? 14। पारिणामिक 2, औषमिक में 1 और क्षायिक में 1। अभी अपूर्वकरण की बात जरा देखेंगे गौर से। 8वां गुणस्थान, गति कितनी है? कषाय 4 कषाय। हाँ, अब वेद 3, लेशा 1, श्रेणी में एक ही शुक्ल लेशा होती है। अभी एक ही लेशा होगी, अब गिनना है कितने होते हैं। हाँ, तो लेशा 1 हुई, मिथ्या तो नहीं, असंयम नहीं, अज्ञान है, असिद्धत्व है, कितने हुए? 11 हुए औदयिक भाव, अपूर्वकरण गुणस्थान में औदयिक भाव 11 हो गए। अब क्षयोक्षमिक भाव को गिनेंगे हम, ज्ञान चारों रहेंगे कि कोई मिट जाएंगे? चारों है, दर्शन भी 3 है, दानादि 5 है। अब नीचे में से क्या रहेगा उसको? क्षयोक्षम सम्यक तो रहेगा ना? नहीं रहेगा। श्रेणी कोई क्षयोक्षम सम्यक तो के साथ कोई भी जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता। द्वितीयोक्षम होगा या क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा, बराबर? यानी क्षयोक्षम सम्यक तो भी नहीं, संयमासंयम भी नहीं, और सराग चारित्र भी नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो उसको उपशम चारित्र होगा, शपक श्रेणी चढ़ेगा तो उसको क्षयिक चारित्र होगा। हम क्षयोक्षम ही भाव चल, अभी क्षयोक्षम की बात चल रही, तो इसलिए श्रेणी वाले को क्षयोक्षम भाव ये सरक चारित्र वाला क्षयोक्षम नहीं लेना, उसके जो क्षयोक्षम होने की नहीं, वो ज्ञान दर्शन और वो लब्धि वाले वो गिने। कितने हुए वो? 12 हो गए। तो 11 औदयिक भाव और 12 क्षयोक्षमिक भाव, 11 और 12 लिखें, पारिणामिक तो 2 है ही। अब मेरा 11 औदयिक के और 12 क्षयोक्षमिक के देखें, औक्षमिक भाव कितने हो गए अभी बोलो? या एक आप विचार करो, औक्षमिक उपशम श्रेणी में औक्षम भाव कौन कौन से हो सकते हैं? 2 कौन से? हाँ, इन्हें उपशम सम्यक्व के साथ, औक्षमिक सम्यक्व के साथ उपशम श्रेणी चल रहा है तो औक्षमिक चारित्र भी है उसमें 2, औक्षमिक भाव 2। और किसी जीव को क्षायिक भाव हो गए तो कितने हो गए? अभी हम अकेले अपने अपूर्वकरण इतना ही लिखा है, इसमें क्षपक श्रेणी भी हो सकती है।
क्षपक श्रेणी होगी तो उपशम चारित्र हो सकता है ना?
क्षपक श्रेणी वाले को क्षायिक सम्यक्व और क्षायिक चारित्र, क्योंकि हमने अपूर्वकरण इन जनरल लिखा है और हमने नाना जीव लिखे तो दोनों को गिनना, तो औक्षमिक भाव भी 2 गिनेंगे और क्षायिक भाव भी 2 गिनेंगे। लिखा बेटा? हाँ। अब अनिवृत्तिकरण 9वां गुणस्थान। अभी 9वें गुणस्थान की बात ऐसी है, 9वें गुणस्थान के शुरू में वेद का उदय रहता है, पहले भाग में वेद है, दूसरे वेद है ना, इन्हें वेद भी है, 4 कषाय भी है। दूसरे भाग में क्या होता है? वेद तो मिट जाता है, 4 कषाय रह जाते हैं। तीसरे भाग में क्रोध मिट जाता है उदय उसका, 3 कषाय रहते हैं। चौथे भाग में ऐसे एक एक करके, इन्हें पहले भाग में वेद है, वेद है, दूसरे भाग में 4 कषाय है, तीसरे भाग में 3 कषाय है, चौथे भाग में 2 कषाय है, और पांचवें भाग में 1 कषाय है लोभ वाला। हाँ, तो इस तरह से औदयिक भाव में फर्क होगा। 9वें गुणस्थान के हम 5 वेद करेंगे। हमने तो अभी कुछ नहीं, वो खाली गुणस्थान में घटित कर रहे, अभी इसी पर 14 मार्गणा लगा हो तो समझ में आ जाएगा। अभी खाली मिथ्यात्व की बात की, अब मिथ्यात्व गुणस्थान में नरक गति की बात कहो हम ऐसा पूछेंगे तो उसमें और भी ज्यादा सोचना पड़ेगा, एक पकड़ने जाओ तो दूसरा छूटता है ना? यानी हम इतने चौकन्ने हो जाते हैं करना नियोग जब सीखते हैं ना, अपना उपयोग बिल्कुल सूक्ष्म होता है, और ये सारे 20 प्ररूपणा हम घटित करते हैं, किसी एक कोई एक क्राइटेरिया लेना और उस पर 20 के 20 प्ररूपणा है, 14 मार्गणा और अन्य 6 बातें, जीव समाज पर्याप्ति प्राण कितने क्या क्या है वो सारा घटित करना गुणस्थान हो गए, तो 20 का कॉम्बिनेशन उसी एक बात पर घटित करते हैं, कौन सा योग होगा, कौन सी लेशा होगी, कौन से क्या होगा वो सब, तब समझ में आता है कि अपना ध्यान एक को पकड़ो तो दूसरा छूट जाए। हाँ, तो सावधानी आती है ना, उपयोग सूक्ष्म होता है। अब ऐसा भी करना नियोग का अभ्यास करने वाले का वहां से उपयोग छूटा और स्थिर हो गया, तो इसको बीज सम्यक तो भी कहा है शास्त्र में, तो क्योंकि उपयोग की सूक्ष्मता इतनी होती है कि दुनिया में क्या हो जाएगा उसका कोई ख्याल नहीं रहता ना, अपना उपयोग अपना बिल्कुल सूक्ष्मता से इस विषय की ओर है। और हम तो ऐसा है तो उपयोग की सूक्ष्मता तो चाहते हैं, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म पदार्थ है और उसके लिए तो उपयोग की कितनी सूक्ष्मता होती है। तो तत्व विचार में हम ऐसा ही सूक्ष्म उपयोग उसमें तल्लीन कर देते हैं तो विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभव हो जाता है। तो ये करना नहीं हो कोई ऐसा फालतू नहीं है टाइम पास करने के लिए। अंत में पांचवे भाग में, नौवे गुणस्थान के पांचवे भाग में कौन सा लोक का उदय है? बादर लोक का। और फिर वो बादर लोक का सूक्ष्म लोक करने का कार्य तो नौवें में होता है, परंतु सूक्ष्म लोक का उदय दसवें में हो जाता है, परंतु नौवे के अंत में वो स्थूल कहो या बादर लोभ ही होता है, नहीं होता वो। जब अंत समय आता है तब हम नाश कहते हैं, जहां जो है उसको वहां है कहेंगे, जहां नहीं है नवे के अंत में उसका अंत होता है, परंतु नवे में तो रहता है, ख्याल है ना, नवे में है यानी नवे का भी नाश होता है और लोक का भी नाश होता है। इसी बात है अंत में नाश होता है उसका अर्थ क्या है? हाँ, जब सूक्ष्म लोक का उदय शुरू होता है तो हम उसको दसवां गुणस्थान कहते हैं, जब तक बादर लोक का उदय है तब तक हम उसको नौवां गुणस्थान कहते हैं, जब सूक्ष्म लोक का उदय शुरू होगा तो हम उसको दसवां गुणस्थान कहते हैं। अब ये हम आगे बढ़ेंगे, अनिवृत्ति बीज सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व के अलग अलग प्रकार के ना, बीज सम्यक्त्व, आज्ञा सम्यक्त्व। हाँ, अब हाँ, जो कुछ छोड़ावे छे वो छोड़ावे छे। ये अनिवृत्तिकरण में पहला भाग है उसको कहते हैं सवेद भाग। उसमें कौन कौन सी गति है? एक ही गति है। कषाय अभी तो चार है, नौवां गुणस्थान चल रहा है, स्टार्टिंग में चारों कषाय है। वेद कितने हैं? तीनों वेदों का उदय है, हमने देखा था ना, तीनों वेद सहित पुरुष जीव, द्रव्य से पुरुष, वो श्रेणी चढ़ता है। हाँ, क्योंकि वो वेद नाम का जो कर्म है, किसी कर्म का उदय चल रहा है तो उसको हम कहेंगे वेद है। लेशा कितनी है अभी बोलो? एक शुक्ल लेशा। और नीचे अभी अज्ञान और असिद्धत्व है अभी, हाँ, दोनों। तो कितने भाव हो गए उसके? 11 हुए ना, 11 हुए। सार्वक्षमिक भाव ज्ञान 4, दर्शन 3, दानादि 5। वो उतने ही रहेंगे, वो उतने ही रहेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अभी इसके आगे के भागों में जो हम देखेंगे वो सारा परिवर्तन औदयिक भाव में होगा। अभी श्रेणी में ऐसे औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र, क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र, वो तो कंटिन्यू रखेंगे। अब इसमें एक एक भाग में एक एक कषाय को घटाते जाएंगे। पहले में पहले अभी तीनों वेद लिए थे, है ना, तो तीन वेद चले जाएंगे दूसरे भाग में, दसवां भी नहीं, अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग में तीन वेद चले जाएंगे। अभी कितने गिने थे अपने? 11 गिने थे ना, 8 हो जाएंगे, बाकी तो ऐसे ही रखना। अभी तो कषाय आगे वाले, पहले 8 रखेंगे ना, अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में 11 है, दूसरे भाग में 3 कम करना 8 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, एक लोग रहेगा ना। हाँ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, 7:30 हो गए, कल दोबारा ले लेंगे इसको, 9 से शुरू करेंगे। बोलो महावीर भगवान जय।